நாராயண 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 ஸ்ரீவன் நாராயண 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 ஸ்ரீமன் நாராயண நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயண 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 சியாவர ராமச்சந்திர கீ மார்மூட்ட வம்சி வாலே கீ.
இதுல பூஷா கி சார் கே பீச் கே மஞ்சு ஹே तीव्र बैराग शीघ्र कैसे हो, मैंने एक झटपट संसार के मां बैराग कैसे हो, पर वो बैराग भी तीव्र जब हम ये समझ ले यह जो संसार है दुख रूप है और नाशवान है और हमारे जो लाखों जो करोड़ों जन्म हुए उसमें कारण है संसार की प्रीत संसार के मां राग, संसार में जो राग है वो हमारे लिए घातक है, संसार के मां जो प्रीति है वो हमारे लिए महान एक बंधन है, जो आसक्ति है सब अनर्थों की मूल है, जितने जो समझो कि काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने जो विकार होते हैं मूल में वो आसक्ति है, और आसक्ति के मूल में है समझो कि मैं भाव, और ये अज्ञान से और संसार के विषय भोगों के मां जो आसक्ति है वो भी सो अज्ञान से है, तो ज्ञान का नाश हो ज्ञान से, और उस ज्ञान की प्राप्ति महापुरुषों के संग से और श्रद्धा से निष्काम कर्म योग के साधन से और ज्ञान के साधन से और ईश्वर की कृपा से, और भगवान की भक्ति करने से भगवान की कृपा से ये सब बात हो, इसलिए हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए, ये जिससे एक प्रकार से यह संसार हमको दुख रूप और नाशवान प्रतीत हो। भगवान तो कहते हैं गीता के माँ की यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनि एव ते आदंतवंत कोंते न ते सूरम ते बुले, गीता अध्याय 5:22 के बीच के माँ, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार के विषय भोग इनकार इंद्रियों के साथ में जो संबंध है, विषयों के साथ में इंद्रियों का संबंध और उससे उत्पन्न जो सुख है उसको कहा संस्पर्श जाप होगा, तो ये सब दुख के हेतु है, परिणाम में दुखी दुख है और आदि अंत वाले नाशवान क्षण भंगुर है, इस प्रकार से विवेकी जो ज्ञानवान है वे समझते हैं, इस कारण से वे संसार के विषय भोगों के मान नहीं रमते, जो रमते हैं वे मूर्ख है, साक्षात सत्यनारायण परमात्मा को छोड़कर के भगवान श्री राम श्री कृष्ण को छोड़कर के जो संसार के विषय भोगों के बीच के वहाँ रमता है वो तो एक समझो की धूल चाहता है, जैसे जो पुरुष हमको धिक्कार देते हैं कि रे साक्षात भगवान के रहते हुए तुम संसार के विषय भोगों के वहाँ रमते हो, तो ये तो बैराग करने की चीज है, जो बैराग होता है मन जब शुद्ध होता है तो समझो की एक ही उपदेश से बैराग हो जाता है क्षण मात्र के बीच के वहाँ, जैसे राजा बाबू को गया था समझो की बंगाल के बीच के वहाँ एक बड़े धनी आदमी समझो थे, और कोई एक ग्वालियर दूध बेचने वाली उनके यहाँ दूध बेचा और पैसा मांगा, तो उनका जो मुनीम है उसने कहा कि ठहर बाजार में कोई और काम हो तो कर, तो वो बाजार का काम करके लौट कर आई और आकर के एक प्रकार से पैसा मांगा, उसने बंग भाषा में बंगाल भाषा में कहा बंग भाषा में कि जनाब यानी तुम ठहर थोड़ी बात, तो उसने ये उत्तर दिया कि बाबू आर गेला गांव, इसको अर्थ यह है कि और समय नहीं है, सूर्य भगवान अस्ताचल पर जा रहे हैं, मेरा गांव दूर है, तो इस वास्ते आप विलंब मत करो। तो मालिक ने कहा इसके पैसे दे दो बेचारे के, तो मालिक का हुक्म पाकर वो तुरंत उनका पैसा देकर बंगालियों को विदा कर दिया, वो बात उसके लग गई लाला बाबू के, उसने कहा भैया अपना तलपट और सब जोड़ करके देख लो, अरे ये सब इसका तकलीफ कर दो रुपयों का और कैसे क्या करना है, क्यों बोलो आठ बेला ना और समय कहाँ हमारे पास? हम मृत्यु तो नजदीक आ गई है, अब समय कहाँ? तो वो सब कुछ एक प्रकार से तथा कम की तथा जुगत कर करके अरे वो अपने घर से चला गया, तो चित्त में बैराग हो गया, क्षण मात्र में झटपट बैराग हो गया। तो क्षण मात्र के वहां बैराग हो जाता है, मौके के ऊपर कोई बात लग जाती है तो ये मालूम हो जाता है कि भी अब तुम्हारी मृत्यु तो नजदीक ही है और अपने काम शीघ्र करना चाहिए। जब मृत्यु नजदीक दिखती है तो समझो कि चित्ते वहां बैराग होता है। इसी बात को लेकर के नारायण स्वामी ने कहा, दो बातन को भूल मती, जो चाहत कल्याण नारायण एक मोत को, दूजे श्री भगवान की। दो बातन को नहीं भूलना चाहिए, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो एक तो नारायण को और एक जो है तो मौत को। मौत को याद करने से उसे एक तो पाप नहीं बनता और एक मौत को याद कर लेने से भगवान का भजन नहीं छूटता। वो देखता है कि भी मरना है तो संपूर्ण जो पदार्थ है ये सब काल के मुख में पड़े हैं और प्रत्यक्ष जो है सो समझो कि इसको काल सो ग्रास रहा है। यह बात जब ध्यान में आ जावे तो तुरंत बैराग। महाभारत के बनपन के में लिखा है कि यक्ष ने ये बात पूछी थी कि आश्रय क्या है, तो राजा युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया था कि रोज रोज जो है तो लोग यमलोक को जा रहे हैं, ये देख करके भी एक प्रकार से हम लोगों को अपनी मृत्यु जो तो निकट नहीं दिखती। आश्रय तो लोक ही नहीं, ये सारी दुनिया सारा संसार जड़ चेतन सारे पदार्थ एक प्रकार से क्षण क्षण के बीच के मां बदल रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है और एक प्रकार के थी हम इसकी तरफ ध्यान दे करके नहीं देखते हैं। सब क्षण परिणामी है, जितने जो जड़ पदार्थ हैं तो इनको देख करके हमको एक प्रकार से उपदेश लेना चाहिए। इस प्रकार के हम उपदेश लेवे तो हमारा बहुत ही शीघ्र कल्याण हो सकता है। उपदेश हमारे को हर चीज से मिलता है, किसी भी चीज की तरफ हम ख्याल करें तो उपदेश हमारे को हर चीज से मिलता है। ये सभी चीजें हमारे को उपदेश दे रही और जिस विषय का हम उपदेश चाहे उसी विषय का उपदेश हमको ऐसा मिल रहा है, किंतु हम ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते, इसलिए उसका विशेष असर नहीं होता। जैसे ये जो हमारी चतर है इससे हर एक प्रकार का उपदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। संकेत से ये चतर हमारे को बतला रही है कि ये चतर जो है शरण के विषय में, शरणागति के विषय में क्या उपदेश देती है। बोलो देखिए, बोलो कैसे? आप देखिए ये जो चतर है इसका जो मालिक है, जो कुछ करना चाहता है ये समझो कुछ भी नहीं कहती। चतर ने अपना सर्वस्व अपने मालिक के समर्पण कर रखा है। थोड़ी बार के वास्ते मान लो कि इस चतर का मैं मालिक हूँ, इस चतर को उठा करके मैं मस्तक पर रखता हूँ, तो ये चतर यूँ नहीं कहती कि मैं तो आपकी हूँ और आपकी शरण हूँ, मुझको सिर पर क्यों रखते हो। इस चतर को मैं चरणों में रखता हूँ, तब ये चतर यूँ नहीं कहती कि उसको आप चरणों में क्यों रखते हो। इस चतर को मैं फाड़ डालता हूँ, तब ये कुछ भी नहीं कहती। इस चतर को उठा करके मैं आग में झोंक देता हूँ, तो भी ये कुछ भी नहीं कहती। तो इससे हमको ये उपदेश लेना चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से यह चतर अपने मालिक के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर रखा है, इसी प्रकार से हम अपना जो मालिक परमात्मा है उसको हम अपने आप को अपने सर्वस्व को समर्पण कर दे। शरण है जैसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान बावन को अर्पण कर दिया था और अपने आप को भी अर्पण कर दिया था, इस प्रकार से सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देना जो है ये भगवान की शरण है। तो ये शरण का उपदेश हमारे को इस चतर से मिलता है। और जैसे समझो कि एक प्रकार से कठपुतली होती है वो सूत्रधार के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण किए हुए हैं, सूत्रधार जैसे उसको नचाता है वो नाचती है और जिस प्रकार से उसके लिए विधान कायम करता है जय पराजय हार जीत, तो वो एक प्रकार से उसी प्रकार से वहाँ कोई भी आपत्ति नहीं है। कहो कि वो तो जड़ है। बोलो हम चेतन होकर मैंने क्या किया, पर हम चेतन है तो और उससे हमारे में विशेषता होनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने समझो कि भगवान के प्रति अपने आप को अर्पण कर दिया था और अपने रथ को अर्पण कर दिया था और घोड़ों को रथ को घोड़ों की बागदौड़ को सब भगवान के अर्पण कर दिया था और भगवान जिस प्रकार से थी चलाते थे वैसे ही चलते थे। इसी प्रकार से थी हम जो है भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, में हमारे शरीर रूपी रथ को भगवान के अर्पण कर दे और समझो इंद्रिया रूप जो घोड़ा है इनको और मन रूपी लगाम को भगवान को अपना सारथी बना करके जैसे अर्जुन ने बनाया था ऐसा हम भगवान के हाथ में सौंप दें और जो भगवान चला रहे जीवन चले हाथ हाथ करके चले। समझो जो जड़ जो कठपुतली होती है उसमें तो जड़ता इस वास्ते वो हाथ नहीं सकती, उसमें संतोष असंतोष कुछ नहीं हो सकता, किंतु हम तो चेतन है तो हमारे में विशेष होना चाहिए कि हम हर वक्त चित्त के मां प्रसन्न होते रहे और सब जो कुछ हो रहा है इसको भगवान की लीला समझते रहे और सर्वत्र सब में हम भगवान का दर्शन करते रहे। क्यों भगवान सब में व्यापक है ही, भगवान ने ये बात कही है कि मैं सब में व्यापक हूँ, मेरे करके ये सब है सो परिपूर्ण है। इस प्रकार समझ करके कि भगवान का सब में दर्शन करके हम खुश हो और जो कुछ हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है या भगवान की लीला मान करके हम खुश हो तो हमारा बहुत ही शीघ्र कल्याण हो सकता है। तो ये एक प्रकार से शरणागत की जो बात कही सो ठीक है, किंतु अब ये पूछना कि क्या चतुर शक्ति हमारे को अपने बैराग का उपदेश भी मिल सकता है? बोलो जरूर। या जो चतुर है समझो कि पुरानी होते भी तो यह चतुर संकेत करती है कि जैसे मैं पुरानी हो गई ऐसे तुम भी पुरानी होते ले। ये तुम्हारा जो शरीर है ये भी वृद्ध हो गया पुराना हो गया और पुराना होने के बाद के माँ आगे जाकर क्या होता है कि वो चीज खत्म हो जाती है। तो जैसे यह चतुर कहती है मैं एक प्रकार से खत्म होने के नजदीक हूँ ऐसे तेरा शरीर भी एक प्रकार से पुराना हो गया ये भी मरने के नजदीक है। तो इस प्रकार का उपदेश हम बैराग के विषय में चतुर से ले सकते हैं और इसके लेने से अवश्य बैराग होना चाहिए। यदि नहीं बैराग होता है तो हमने चतुर से शिक्षा ग्रहण नहीं की। फिर ये बात है कि ठीक है जैसे चतुर से बैराग होता है ऐसे चतुर से ज्ञान भी मिलता है क्या? ज्ञान भी मिलता है। चतुर को देखने से ये ज्ञान पैदा होता है कि एक ऐसा समय था कि संसार के मन चतुर नहीं थी और एक दिन ऐसा समय आएगा ये चतुर संसार के मन नहीं है। अव्यक्ता दीन भूतानी व्यक्त मध्यान भारत और अव्यक्त निधनाने व तत्र का परिधि होना गीता अध्याय 2 श्लोक 28 के बीच में भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं ये सारे भूत प्राणी हैं आदि के बीच के मां अगर थे अप्रगट थे और आखिर के बाद भी अप्रगति है तो बीच की अवस्था में क्षणिक काल के वास्ते जो ये प्रतीत होते हैं तो इनके विनाश के बीच के वहाँ शोकपूर्ण बात का ये भगवान उपदेश देते हैं। तो इस चतुर से भी हमारे को ये उपदेश मिलता है कि ये चतुर न तो पहले थी और न आगे रहने वाली है और बीच में थोड़ा दिन के लिए प्रतीत होती है तो इसका विनाश हो जावे तो इसके वास्ते कौन चिंता है। तो ये चतुर हमारे को संकेत करके कह रही है हम लोगों को इसे यदि हम शिक्षा ले कि तुम अपने शरीरों की तरफ ख्याल करके देखो आज के 100 वर्ष के पहले तुम्हारे शरीर नहीं थे और समझो कि 100 वर्ष के बाद भी तुम्हारे किसी के शरीर नहीं रहेंगे तो न तो पहले थे और न भावी में ही हैं। ये थोड़े काल के लिए ये एक प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं तो इनके विनाश में कौन बात की चिंता है। ये तो वास्तविक है जिसके वहाँ है ही नहीं आकाश तो एकदम शुद्ध है उसके वहाँ कभी बादल हो जाते हैं और मिट जाते हैं हो जाते हैं और मिट जाते हैं। इसी प्रकार से ये सारा दृश्य सारा संसार और सारे शरीर इसे माया के वित्त के माँ प्रकृति के माँ उत्पन्न होते और विनाश होते उत्पन्न होते विनाश होते हैं। एक प्रकार से थी जो विवेकी है वे इसके माँ भूलते नहीं। आकाश जो है सुसना निर्लेप ही रहता है बादलों के उत्पन्न होने से और गर्जने बरसने से और बिजली चमकने से और समझो कि मिट जाने से अपने आकाश पर कोई असर नहीं आता वो जुगा तीन रहता है। तो आकाश की जो है तो समझो कि आत्मा है या यूं कहो कि परमात्मा है उस परमात्मा में असर से ये उत्पन्न होती है विनाश होती है उत्पन्न होती है विनाश होती है परमात्मा कभी इसके विकार से विकारी नहीं होते, परमात्मा निर्विकार है। इस प्रकार का समझना ही ज्ञान है। तो ये अपने कहते कि देख के वहां तुम्हारे जो अभिमान है वो बेकार है, समझा। तुम ये सोचो कि देह जो है तुम्हारा उत्पन्न होता है और विनाश होता है, जैसे आकाश में बादल उत्पन्न होते हैं और विनाश होते हैं, जैसे यह चंद्र जो है तो एक दिन उत्पन्न होगी एक दिन विनाश हो जाएगी, या संसार के मान नहीं रहेगी। तो आप कहती है इसी प्रकार से यौन मात्र पदार्थों की यही दशा है। जितने जो पदार्थ तुम्हारे को दिख रहे हैं, न तो कभी पहले थे और न ये रहने के हैं, इसलिए क्षणिक काल के वास्ते जो प्रतीत होने वाले जो पदार्थ हैं उनको सत्य समझ करके उसे के संयोग और वियोग में सुख और दुख का एक प्रकार से कल्पना करना है, ये मूर्खता है। ये एक प्रकार से ज्ञान का उद्देश्य इस तरह से मिलता है कि देखो स्वप्न के बीच के मां स्वप्न के शरीर में मनुष्य अहम भाव कर लेता है और उसे में बहुत पदार्थों में ऐसा ममता का भाव कर लेता है कि ये शरीर में पूरे संसार के पदार्थ मेरे, अरे दूसरों के, जिनमें प्रबुद्धि है उसके मां तो द्वेष होता है, जिसमें अहम बुद्धि है उसके मां राग। इस प्रकार से राग द्वेष और हर्ष शोक होते रहते हैं स्वप्न काल के बीच के मां, किंतु जब आंख खुल जाती है तो फिर मालूम होता है कि कहां तो वो संसार और कहां हंता ममता और कहां तो राग द्वेष और कहां हर्ष शोक, सब एक प्रकार से समझो कि अपने आंख खुलने के बाद में ज्ञान हो जाता है कुछ भी नहीं है। तो जैसे स्वप्न का संसार है इसी प्रकार का यह संसार है, वास्तु के भीतर के बीच के मां जो कुछ प्रतीत होता है वो तो है नहीं, और जो है वो प्रतीत होता नहीं, ये सारी संसार जो स्वप्नवत है। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जावे तो बस समझो कि आंख खुल जावे, यानी ज्ञान रूपी नेत्र खुल जावे, फिर इसका सुधार होकर के उद्धार हो जावे। तो ये बात भी हमारे को इस चंद्र से मिलती है, और चंद्र से हम लोगों को विचार करके देखें तो समझो कि कर्तव्य का उपदेश भी मिलता है, कर्म का उपदेश भी। कर्म का उपदेश कैसे, या चंद्र जो है सो अपने निष्काम कर्म योग का उपदेश भी देती है। निष्काम कर्म योग का उपदेश चंद्र से कैसे मिले, ये बोलती तो नहीं, ये तो एक प्रकार से संकेत से समझना पड़ता है। चंद्र को देखने से थी स्वाभाविक ये ज्ञान होता है ये कौन काम की चीज है, तो देखने से आता है कि ओढ़ने की चीज है, और दूसरी बात के बिछाने की चीज है, बिछा भी सकता है, और बोले चाह से उसका कोई कपड़ा भी सीमा सकता है। त्वचा जो है चमड़ी इसकी रक्षा के काम की चीज है, और उन्होंने और कोई काम की चीज, खाली इससे शरीर की रक्षा हो सकती है, समय के अनुसार शरीर की रक्षा हो सकती है। हमारी जो त्वचा जो इंद्रिय है चमड़ी जो है उसके मां ये मदद करती है, बहुत बलोटों का काम की चीज नहीं, ये कोई खाने की चीज नहीं, कोई एक इसको खा नहीं सकता। यदि कोई पशु खावे तो हम लोग हंसते हैं कि देखो ये पशु है तो गाय है तो मूर्ख है, ये खाने की चीज थोड़ी, ये कोई सूंघने की चीज भी नहीं कि इसमें कोई गंध आती हो, इसमें कोई शब्द भी सुनाई नहीं देता कि जो हम कान के लगा कर इसमें कोई शब्द ऐसा सुने, तो न तो ये कर्मेंद्रिय का विषय है, न कोई नासिका इंद्रिय का विषय है, न कोई जीवा इंद्रिय का विषय है, और न कोई नेत्र का विषय है, ये तो केवल चंद्र की त्वचा का विषय है, और कोई काम की चीज ये नहीं है। तो ये चंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरे विषय में इतना सूक्ष्म विचार किया, ऐसा तुम अपने शरीर के विषय में भी सूक्ष्म विचारो कि ये जो तुम्हारा शरीर और इसके मां जो इंद्रियां और मन बुद्धि इसमें तुम बैठे हो, एक प्रकार से ये क्यों नहीं विचार करते, जैसे चंद्र को देख करके ये विचार किया कि चंद्र कौन काम की चीज है, ऐसे तुम्हारा जो शरीर है कौन काम की चीज है, इस पर भी थोड़ा विचार करके देखो। ये तुम्हारा जो शरीर है तुम मर जाओगे, इसकी खाक हो जाएगी, तो न इसकी वो खाक किसी के काम आवेगी, न जड़ी हुई हड्डियां भी किसी के काम आवेगी। और ये जो तुम्हारा शरीर है ये एक प्रकार से इस काम की चीज है कि इससे सबकी सेवा बन सकती है, और सबकी सेवा के लिए भगवान ने तुम्हारे को ये शरीर दिया, और ऐसे शरीर को पाकर के ठीक इसका उपयोग नहीं करोगे तो समझो कि तुम अपने कर्तव्य से घिरोगे और इसका नतीजा खराब होगा। इस चंद्र से हम लोग काम लेते हैं, किंतु चंद्र एक प्रकार से बदले में हम लोगों से कुछ भी काम ये नहीं लेती। तो ये चंद्र हमारे को निष्काम भाव से कहलाती है कि ये अपना जो शरीर है इसे दुनिया की सेवा करनी चाहिए और उसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए लेना नहीं चाहिए। ये कर्तव्य तो हमको बतला रहे, लेना जो है वो तो एक सिर पर भार बढ़ाना है और बोझा पड़ने से संसार सागर के मन डूबना है, और देना है वो हल्का होना है। तो इसलिए देना ही देना चाहिए, लेना नहीं। जो आदमी किसी नदी के पार जाना चाहता है तो वो एक प्रकार से जल का त्याग करता चला जाता है, तो उस पार चला जाता है। और जब जल का त्याग करना छोड़ देता है, पानी निकालना छोड़ देता है, वहीं डूब जाता है। तो जब तक हम जीते रहे, समझो कि ये संसार के जो पदार्थ और भोग हैं, इसका त्याग करते रहे तो उस पार चले जाएंगे, और जहाँ त्याग करना बंद किया वहीं डूब जाएंगे। तो ये चंद्र हमको ये बात सिखला रही है, चंद्र ये बात बतला रही है कि चंद्र कहती है कि मैं देती हूँ सबको आराम, किंतु मैं बदले में किसी किसे देती नहीं। तो ये बात तुम सीख लो कि तुम दो और ले मत। तो चंद्र तो कहती है कि मैं एक अंश मात्र का सुख पहुँचा सकती हूँ, कवचा को सुख पहुँचा सकती हूँ, और कान को और नासिका को जीवा को मैं कुछ नहीं पहुँचा सकती, और तुम तो मनुष्य हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। हम पशु को देखते हैं, गधे को देखते हैं, देखकर यही ज्ञान होता है कि ये भार ढोने वाला पशु है। हम गधे से बेस पढ़ना चाहें या बेस पढ़ाना चाहें तो काम नहीं हो सकता। हम कहें कि गधे से कि भी आज तुम एक प्रकार से थी, हमारे पिता का श्राद्ध है, तुम अपने थोड़ा श्राद्ध के काम में मदद कर दो, समझा, या फूल पत्ती जुटा दो, या एक प्रकार से तुम अपने वेद का पाठ ही कर दो, तर्पण हमको सुना दो। तो ये लोग कही अच्छा मूर्ख है, वो काम गधा नहीं कर सकता, वो तो गोजा ढो सकता है।
नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, मार मूठ बंसी वाले की जय।